लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहाँ तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन के संत दामोस प्रांगण में उपस्थित सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
अरे फ्रतेल्ले सोरेल्ले बोंजोर्नो।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। संत पापा ने आम दर्शन समारोह हेतु विश्वासियों की उपस्थिति को लेकर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा,
Sono contento di riprendere questo incontro faccia a faccia।
पुनः आमने सामने आना मेरे लिए हर्ष की बात है। एक खाली कमरे से वार्ता करना जहां कोई भी नहीं है अपने में अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने धर्माध्यक्ष सपियंसा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की जिन्होंने विश्वासियों और तीर्थ यात्रियों की उपस्थिति में आम दर्शन समारोह करने का निर्णय लिया। संत पापा ने कहा कि आप सबों को देखकर मुझे अत्यंत खुशी होती है क्योंकि हम सभी यीशु ख्रिस्त में भाई बहने हैं जो एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग यद्यपि हमसे दूर हैं, लेकिन वे हमारे करीब हैं। उन्होंने आम दर्शन समारोह में सहभागी हो रहे लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप संत पापा के इस संदेश को सबों के लिए ले जाएं कि संत पापा सबों के लिए प्रार्थना करते हैं और वे सबों से प्रार्थना में सहचर्य की मांग करते हैं। संत पापा ने कहा कि प्रार्थना के बारे में यदि हम कहें तो ख्रिस्तीय प्रार्थना वाटिका में टहलने जैसा नहीं है। प्रार्थना करने वाले जिन्हें हम धर्म ग्रंथ और कलीसिया के इतिहास में पाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जिसकी प्रार्थना अपने में आरामदेह रही हो। हाँ, आप तोते की भांति रटी रटाई प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वह एक प्रार्थना नहीं है। यह निश्चय ही शांति प्रदान करती है, लेकिन अपने में आंतरिक संघर्ष के बाद कभी कभी यह जीवन की लंबी कठिन अवधि होती है। प्रार्थना करना अपने में सहज नहीं होता है और इसी कारण हम इससे दूर भागते हैं। हर समय जब हम प्रार्थना करने की चाह रखते हैं, हमें तुरंत दूसरे कार्यक्रमों की याद आ जाती है जो उस समय हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण और अधिक तत्काल लगते हैं। संत पापा ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं थोड़ी प्रार्थना करने की सोचता हूँ, लेकिन दूसरी चीजों का ख्याल आने लगता है। इस तरह हम प्रार्थना से भागते हैं। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा ही होता है। हमेशा ही अपनी प्रार्थनाओं को दरकिनार करने के बाद हमें ऐसा अनुभव होता है कि वे चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। हमें ऐसा लगता है मानो हमने समय बर्बाद किया है। इस भांति कैसे शत्रु हमें फुसला देता है। ईश प्रजा, स्त्री और पुरुष प्रार्थना की खुशी का केवल जिक्र नहीं करते बल्कि वे हमें इसमें होने वाली असुविधा और थकान के बारे में भी बतलाते हैं। कभी कभी वे हमें प्रार्थना के समय व्यतीत करना और प्रार्थना करने के तरीके में होने वाली कठिनाइयों का जिक्र करते हैं। कुछ संतों ने इसकी उपयोगिता का ख्याल किए बिना प्रार्थना के स्वाधीन होने पर भी वर्षों निरंतर प्रार्थना करना जारी रखा।
Il silenzio, la preghiera, la concentrazione sono esercizi difficili e qualche volta la natura umana si ribella।
शांति, प्रार्थना और ध्यान अपने में कठिन क्रियाकलाप हैं। कई बार मानवीय प्रवृत्ति इनका विरोध करती है। हम दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन गिरजाघर प्रार्थना में हम नहीं रह सकते हैं। वे जो प्रार्थना करने की चाह रखते हैं, इस बात को याद करें कि विश्वास अपने में सहज नहीं है और कई बार यह जीवन के अंधकारमय क्षणों में उभर कर आता है, जिसका कोई संदर्भ नहीं होता है। हमारे विश्वासी जीवन में कुछ क्षण ऐसे अंधकार भरे होते जिसे कुछ संतगण अंधेरी रात की संज्ञा देते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं सूझता है, लेकिन वे प्रार्थना करना जारी रखते हैं। संत पापा ने कहा कि कलीसिया की धर्म शिक्षा में हम प्रार्थना के शत्रुओं की एक लंबी श्रृंखला को पाते हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना को कठिन बनाते हैं। कुछ हैं जो प्रार्थना को संदेह की नजरों से देखते हैं कि यह सर्वशक्तिमान ईश्वर के यहाँ पहुँचता है। ईश्वर क्यों चुप रहते हैं? यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वे दो शब्द कह कर ही सारी चीजों को ठीक कर देते। ईश्वर की दिव्यता के आगे कुछ लोग हैं जो प्रार्थना को केवल मनोवैज्ञानिक क्रियाकलाप स्वरूप देखते हैं। यह कुछ हद तक उपयोगी हो सकता है, लेकिन यह ना तो सही है और ना ही आवश्यक। एक व्यक्ति विश्वासी नहीं होने पर भी प्रार्थना का अभ्यास कर सकता है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
I nemici peggiori della preghiera sono però dentro di noi.
प्रार्थना के सबसे खराब शत्रुएं हमारे अंदर ही व्याप्त हैं। कलीसियाई धर्म शिक्षा उनका जिक्र करते हुए कहती है, अपने जीवन के सूखे क्षण, उदासी की घड़ी, क्योंकि हमारे पास बहुत संपत्ति है जिसे हमने ईश्वर को अर्पित नहीं किया है, हमारी इच्छा अनुरूप नहीं सुने जाने के कारण निराशा, अहम को चोट लगना, पापी होने के कारण अपने में क्रोध की कठोरता, इस विचार का प्रतिकार करना कि प्रार्थना हमारे लिए एक स्वतंत्र और अनमोल उपहार है। यह स्पष्ट रूप से हमारे लिए सारांश सूची है जिसे हम विस्तृत कर सकते हैं। हम अपनी परीक्षा की घड़ी में क्या करें जब सारी चीजें हिलती नजर आती हैं? यदि हम आध्यात्मिकता के इतिहास को देखें तो हम तुरंत इस बात को पाते हैं कि आत्मा के गुरुओं ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप में समझा जिनका हमने जिक्र किया है। इस स्थिति पर विजय पाने के लिए हर किसी ने कुछ योगदान दिया। एक विवेकपूर्ण ज्ञान या कठिन परिस्थितियों का सामना करने हेतु एक सुझाव। यहाँ हम वृहद सिद्धांतों को नहीं पाते हैं, बल्कि सुझाव को देखते हैं जो अनुभवों के कारण उत्पन्न होता है, जो प्रार्थना में विरोध और दृढ़ता के महत्व को दर्शाता है। संत पापा ने कहा कि हमारे लिए सुझावों के कुछ भागों का पुनरावलोकन करना उचित होगा, क्योंकि हर एक का विस्तार अपने में जरूरी है। उन्होंने संत इग्नासियस की आध्यात्मिक साधना का उदाहरण देते हुए कहा, उनकी वह छोटी पुस्तिका ज्ञान का भंडार है जो हमारे जीवन को व्यवस्थित करने में मददगार है। यह हमारे ख्रिस्तीय जीवन को सैन्य बुलाहट के रूप में समझने हेतु मदद करता है। यह हमारे लिए एक निर्णय को दिखलाता है जहां हम यीशु ख्रिस्त के झंडे के तले खड़ा होने का चुनाव करते हैं, न कि शैतान के। हम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी अच्छाई करने का प्रयत्न करते रहते हैं। संत पापा ने कहा कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमारे लिए यह याद करना अच्छा है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई हमारे साथ है जो हमें देख रहा है और हमारी रक्षा कर रहा है। ख्रिस्तीय मठवासी जीवन के संस्थापक संत अंतोनी अब्बोत ने मिस्र में घोर कठिनाई का सामना किया जब प्रार्थना उनके लिए एक कठिन संघर्ष बन गया। उनकी जीवन गाथा के रचयिता संत अथनासियस अलेक्जेंड्रिया के धर्माध्यक्ष उनके जीवन की सबसे बुरी घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि संत अंतोनी अपने जीवन के 35वें साल में, जो जीवन का मध्यकालीन पड़ाव है जहां बहुत से लोग जटिलताओं से होकर गुजरते हैं, उन्होंने अपने जीवन में तूफानों का सामना किया और विचलित भी हुए, लेकिन उन्होंने उन पर विजयी पाई। जब वे आखिरकार शांत हुए तो उन्होंने ईश्वर की ओर मुड़ते हुए एकदम कटु शब्दों में यह कहा,
Ma signore, dove eri? Perché non sei venuto subito a porre fine alle mie sofferenze? E Gesù rispose, Antonio, io ero là, ma aspettavo di vederti combattere.
आप कहाँ थे? आपने जल्दी आकर मुझे तकलीफों से निजात क्यों नहीं दिलाई। इस पर यीशु कहते हैं, अंतोनी, मैं वहां था, लेकिन मैं तुमको संघर्ष करते हुए देखना चाहता था। यद्यपि अंधेपन के एक क्षण में भी हम उनकी उपस्थिति को देखने में विफल रहते हैं, तो हम भविष्य में सफल होंगे। हमारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा कुलपति याकूब ने एक बार कहा था, निश्चय ही ईश्वर इस स्थान में है और मैंने इसे नहीं जाना। अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखते हुए हम भी यही कहेंगे, मैं सोचता था मैं अकेला था, लेकिन नहीं, यीशु मेरे साथ थे। हम सभी ऐसा कह सकते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
हे हमारे पिता सर्वव्यापी पिता, हे हमारे पिता, तू है पावन सर्व ज्ञानी, तेरा विस्तार सर्व स्वामी, तेरा अधिकार गगन अवनी, देना हमको रोजी रोटी, माफ करना सब नादानी, जान जन जानो।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान पोलिस भाषी विश्वासियों का अभिवादन किया और आश्वासन दिया कि मई का महीना विशेष रूप से ईश्वर की मां को समर्पित है। माता मरियम हर एक की और उनके परिवारों की देखभाल करती हैं। हमारा जीवन और दुनिया का इतिहास ईश्वर के हाथों में है। संत पापा फ्रांसिस अक्सर विश्वासियों को कुंवारी माता मरियम की ओर मुड़ने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। उनकी हर किसी से कामना है कि माता मरियम की भक्ति और आदर के विभिन्न रूप, विशेष रूप से रोजरी प्रार्थना करना, विश्वास के मार्ग पर चलने और ख्रिस्तीय गवाही देने में मदद करेगा। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय पर हुए हमले की 40वीं वर्षगांठ को भी याद किया और कहा, मैं पोलिश भाषी विश्वासियों का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। कल फतिमा की माता मरियम का त्योहार है, साथ ही संत पापा जॉन पॉल द्वितीय पर हुए हमले की 40वीं वर्षगांठ है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने खुद इस बात पर जोर दिया था कि उन्होंने फतिमा की माता मरियम के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया था। यह घटना हमें इस बात का एहसास कराती है कि हमारा जीवन और दुनिया का इतिहास हमेशा ईश्वर के हाथों में है। आइए हम निष्कलंक कुंवारी माता मरियम के चरणों में खुद को, कलीसिया को और पूरी दुनिया को सौंपे। आइए हम शांति के लिए, महामारी के अंत के लिए, तपस्या की भावना के लिए और अपने हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद संत पापा ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और संत पापा फ्रांसिस प्रार्थना करते समय आने वाली परीक्षाओं में न पढ़ने की सलाह देते हुए एक ट्वीट किया। संत पापा ने बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान प्रार्थना विषय पर संदेश दिया। इसी के मद्देनजर उन्होंने ट्वीट कर प्रार्थना की प्राथमिकता पर जोर दिया। संत पापा ने संदेश में लिखा, प्रार्थना करना आसान नहीं है। जितनी बार हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम कई अन्य कार्यों के बारे में सोचते हैं जो अधिक महत्वपूर्ण और जरूरी लगती है और प्रार्थना को छोड़ देते हैं, परंतु बाद में प्रायः हमेशा हम महसूस करते हैं कि वे चीजें बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थीं। इस तरह से दुश्मन हमें धोखा देता है। उधर यरूशलेम में हफ्तों की हिंसा के बाद कल रात गाजा पट्टी में हुई हिंसा से कम 20 मौतें हुई, जिनमें 9 फिलिस्तीनी बच्चे शामिल थे। 4 बच्चे भाई बहन थे और कई एक ही UNRWA स्कूल में पढ़ते थे। गाजा पट्टी में UNRWA संचालन के निदेशक लूसिया एल्मी ने अपने बयान में कहा, गाजा पट्टी में 9 बच्चों की मौत हुई है। बच्चों के खिलाफ हिंसा बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव मंगलवार को हिंसा में आई तेजी पर गंभीर चिंता जताई है। यूएन प्रमुख के प्रवक्ता की ओर से जारी वक्तव्य में मौजूदा हालात और गाजा में हिंसा तेज होने की गहरी चिंता जताई गई है, जिससे काबिज पूर्वी यरूशलेम में तनाव और हिंसा और भड़कने की आशंका है। यूएन प्रवक्ता ने बताया कि बड़ी संख्या में हताहतों के बारे में पता चलने पर महासचिव बेहद दुखित हैं। इनमें गाजा में इसराइली हवाई कार्यवाही में हताहत बच्चे और गाजा से दागे गए रॉकेटों से इसराइली हताहत हैं। महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने इसराइली सुरक्षा बलों से अधिकतम संयम बरतने और सोच समझकर बल प्रयोग किए जाने की अपील की है। उधर मुंबई के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस बताते हैं कि कैसे कोविड-19 मामलों और मौतों की विशाल लहरों के तहत कलीसिया का सामाजिक सेवा विभाग और स्वास्थ्य सेवा विभाग राष्ट्र की आपातकालीन संकट से उबरने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। भारत की कैथोलिक कलीसिया ने कोविड-19 महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर के खिलाफ देश की लड़ाई में अपनी स्वास्थ्य संस्थानों के लगभग 60,000 बिस्तर उपलब्ध कराए हैं। मुंबई के कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने कहा, 50,000 से अधिक धर्म बहने आम तौर पर इन संस्थानों में कार्यरत हैं, जिनमें से 1,000 योग्य डॉक्टर हैं। उन्होंने एशिया न्यूज से कहा, तबाही का सामना करते हुए भारत की कैथोलिक कलीसिया उन सभी पीड़ितों की मदद करने के लिए पूर्ण कोशिश कर रही है। कलीसिया की उदारता के व्यापक कार्य बड़े पैमाने पर पूरे देश में अपनी सामाजिक और विकास शाखा कारितास इंडिया और भारतीय कैथोलिक स्वास्थ्य संघ CHAI के माध्यम से किए गए हैं। CHAI 350 से अधिक स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवा केंद्रों का एक नेटवर्क है। भारत में पिछले 24 घंटों में 3,48,421 नए संक्रमण और 4,205 मौतें दर्ज की गई हैं। रॉयटर्स टैली के अनुसार भारत हर दिन दुनिया भर में दर्ज होने वाली हर 3 मौतों में से एक की मौत की दैनिक औसत संख्या में दुनिया का नेतृत्व करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आधिकारिक आंकड़े बहुत कम हैं। दुनिया भर के देशों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य चिकित्सा उपकरण भेजकर भारत को संकट से उबरने में मदद की है, लेकिन देश भर में कई अस्पताल जीवन रक्षक उपकरणों की कमी से जूझ रहे हैं। कार्डिनल ग्रेसियस ने रविवार को कारितास इंडिया के साथ एक आभासी बैठक की। उन्होंने कहा कि वे प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए अभिनव तरीके खोज रहे हैं। वे कैथोलिक अस्पतालों के साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। कार्डिनल ने कहा, हम अधिक वेंटिलेटर खरीदने और अपने लोगों के जीवन को बचाने के लिए अपने चिकित्सा उपकरणों को बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता का समन्वय भी कर रहे हैं, जो सभी धर्मों और पंथों के लोगों के लिए उपलब्ध होगा। CBCI अध्यक्ष ने बताया कि ख्रीस्तीय स्वास्थ्य सेवा संस्थान बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो तपेदिक, कुष्ठ रोग, एड्स जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं और विकलांग लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, टीकाकरण केंद्रों के रूप में हमारे संस्थान और अलगाव एवं संगरोध केंद्रों के रूप में हमारे स्कूल काम आएंगे। इस बीच कारितास ने कहा कि यह 200 सूचना प्रसार केंद्रों को शुरू कर रहा है ताकि उचित व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके, फर्जी समाचारों या गलत सूचना के प्रसार को रोका जा सके और आधिकारिक सरकारी पोर्टलों के माध्यम से अधिक लोगों को पंजीकृत करके टीकाकरण की दर बढ़ाई जा सके। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।